डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 1727 ईसा 56 से 57 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 27 यशाया अध्याय 56 और 57 है। मुझे लगता है कि समय आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह मैंने अपने बारे में एक अद्भुत कहानी सुनी। एक पूर्व छात्र ने कहा कि वह जाने के लिए पैकिंग कर रहा था और उसके पैरों के नीचे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं उन्हें व्यस्त रखने के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए उन्हें अपनी मदरसा शिक्षा से कुछ कैसेट टेप और एक कैसेट प्लेयर मिला। इसलिए उन्होंने अपने 6 साल के बेटे को एक दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद वह कुछ और कर रहा था और उसने यह परिचित आवाज सुनी और बाहर देखा और यहाँ उसका बेटा कैसेट प्लेयर के साथ सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था उत्साहपूर्वक ध्यान। और उन्होंने कहा कि यह मैं हिब्रू व्याख्या पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था। और 6 साल के बच्चे ने कहा, पिताजी यह लड़का अच्छा है। या तो बच्चा प्रतिभाशाली था या बच्चों के मुंह से निकला। हाँ, ऐसा मत सोचो कि मैं इसे अपने बायोडाटा में डालूंगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। इस दिन के लिए धन्यवाद पिता। आज आपने हमें जो कुछ हासिल करने में सक्षम बनाया है उसके लिए धन्यवाद। ऊर्जा, स्वास्थ्य, दिशा और प्रेरणा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हर चीज में हमारे साथ हैं। और अब जब हम दिन के अंत में आ गए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अब हमारे साथ हैं। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं को हमारे सामने प्रकट करेंगे। हम विनम्रता पूर्वक आपके वचन पर आते हैं। हम आपकी आत्मा की सच्चाई हमें सिखाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। ओह, हम इसे पढ़ सकते हैं। हम यह पता लगा सकते हैं कि शब्दों का क्या मतलब है वे चीजें। लेकिन अंत में प्रभु आपको आना ही होगा और हमें दिखाना होगा कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ है। और हम यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देंगे, आमीन। खैर, हमने अध्याय 1 से 5 तक समस्या और सेवकाई के वादे पर ध्यान दिया है कि इसराइल को वह शुद्ध स्वच्छ जहाज कहा जाता है जिसके माध्यम से भगवान का टोरा दुनिया में जा सकता है। और फिर भी इसराइल विद्रोही, अंधा, अहंकारी है। तो मुद्दा यह है कि यह इसराइल वह इसराइल कैसे बनेगा। और मैंने आपको सुझाव दिया कि इसका उत्तर अध्याय 6 में दास्ता का आह्वान है, जहां यशाया एक मॉडल के रूप में अपना अनुभव प्रस्तुत करता है। यदि अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति अपने होठों को साफ करवा सकता है ताकि वह राष्ट्र को संदेश दे सके, तो अशुद्ध होठों वाले राष्ट्र अपने होठों को दुनिया को संदेश देने के लिए साफ करवा सकता है। हमने अध्याय 7 से 29 में देखा कि दासत्व का आधार यहोवा पर विश्वास है, न कि इस पर विश्वास करना कि क्या कोई वहां द्वार खोलने में सहायता कर सकता है। धन्यवाद। मानवता के राष्ट्रों में विश्वास के विपरीत। लेकिन जैसा कि हमने देखा, भले ही आपने यह सबक सीख लिया हो कि भगवान पर भरोसा किया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हर समय करते रहेंगे। और इसलिए हमने अध्याय 40 से 48 में देखा अनुग्रह, सेवा के लिए प्रेरणा, क्योंकि लोग कैद में हैं और भगवान उन्हें अपने सेवक बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, देवताओं के खिलाफ उनके मुकदमे में उनका सबूत बनने के लिए। लेकिन सवाल वही खड़ा है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पाप के बारे में क्या? परमेश्वर आसानी से यह कैसे घोषित कर सकता है कि हम उसके सेवक हैं? और हमने देखा कि उत्तर भी अनुग्रह है। यदि अनुग्रह दासत्व का उद्देश्य है, तो यह दासत्व का साधन भी है। और हमने देखा कि कैसे 39वें से 55वें अध्याय में उस सेवक का पता चलता है जो आदर्श इसराइल है, जो इसराइल के लिए वह होगा जो इसराइल अपने लिए कभी नहीं हो सकता। अब तो आप सोच सकते हैं कि किताब यही समाप्त हो गई है। मेरा मतलब है, वे भगवान के चुने हुए सेवक हैं, जो सेवक के बलिदान से संभव हुए हैं। और अध्याय 55 बहुत ही उच्च स्तर पर समाप्त होता है। लेकिन किताब खत्म नहीं हुई है। हमारे पास जाने के लिए 11 अध्याय हैं, 56 से 66। अब यदि यह मदरसा में एक कक्षा होती तो मैं आपको वह नहीं बताता जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे स्वयं इसका पता लगाने का प्रयास करूंगा। लेकिन चूंकि आपने कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए आपको इसे प्राप्त करना होगा। जब आप 56 से 66 तक इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो आपको 62वें अध्याय के बाद एक अजीब सी चरमोत्कर्ष की अनुभूति होती है। अध्याय 63, 64, 65, 66 काफी निराशाजनक हैं। और हमें आश्चर्य है कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह विचार मेरे लिए मौलिक नहीं है। यशाया के एक अन्य छात्र ने कई साल पहले इसका प्रस्ताव रखा था। और जब उसने ऐसा किया तो अचानक मैंने कहा, ओह, निश्चित रूप से यही हो रहा है। इन अध्यायों में आपके पास जो कुछ है उसे तकनीकी रूप से चियास्म कहा जाता है, अर्थात आरोही भाग अवरोही भागों के समानांतर होते हैं। इस खंड में शीर्ष पर अध्याय 61 है, श्लोक 1 से 3, वे श्लोक जिनका उपयोग यीशु ने नाजरेथ में अपने मसीहा होने की घोषणा करने के लिए किया था। प्रभु की आत्मा ने शुभ समाचार का प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है, वह केंद्र है, और मैंने वहां गलत अक्षर का उपयोग किया। मैं 60 और 61 और 2 अध्यायों में इसके दोनों ओर हमारे पास सियोन में प्रकाश के उदय की एक तस्वीर है। 39वें अध्याय में और 63वें अध्याय में आपके पास दिव्य योद्धा है, वह योद्धा जो अपने लोगों के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए आता है। वह 39वें, 15-20 अध्याय 39 के अंत तक और अध्याय 63वें, 1 से 6 तक है। उसके दोनों तरफ तो वही है, वह डी है, वह सी है, यहां भी आता है, लोगों की धार्मिकता करने में असमर्थता। तो तकनीकी शब्दों के संदर्भ में यह डी प्राइम है, यह है, क्षमा करें, यह डी प्राइम है, यह सी प्राइम है, यह बी प्राइम है, और फिर शुरुआत में और अंत में आपके पास है। और मैं फिर से आपको यहां पहले प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, धर्मी विदेशियों, विदेशियों, तो वह ए और ए प्राइम है। तो हम शुरुआत और अंत को दोगुना कर रहे हैं और हम अभिषिक्त मसीहा के इस शिखर तक जा रहे हैं। धर्मी विदेशी, लोगों की धर्मी होने में असमर्थता, दिव्य योद्धा, सियोन में प्रकाश का उदय, मसीहा, सियोन में प्रकाश का उदय, दिव्य योद्धा, धर्मी होने में असमर्थता और धर्मी विदेशी। अब हम अगले 4 हफ्तों में इसे खेलते हुए देखेंगे, लेकिन क्या हो रहा है कि इस प्रकार का उपकरण चरमोत्कर्ष की इस समझ को बनाए रखते हुए इस बात पर जोर देना संभव बनाता है कि यह सब क्या है। देखिए क्या होता यदि पुस्तक केवल 56, 57, 58, 59, 60 होती और वहीं रुक जाती। ओह, हम मसीहा के रहस्योद्घाटन के इस अद्भुत चरमोत्कर्ष पर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम यह नहीं समझ पाएंगे कि मुद्दा क्या था, कि मसीहा अपने लोगों के लिए धर्मी जीवन जीना संभव बनाने के लिए आया है ताकि दुनिया एक हो सके। इसलिए हम चरम बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम इस पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है और लक्ष्य क्या है। यह फिर वहीं वापस चला जाता है जहां हम अध्याय 2 में थे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब ऊंचे पहाड़ों के समान दृढ़ किया जाएगा और सब जातियां उसकी ओर प्रवाहित होंगी। बहुत सी जातियां आकर कहेंगी, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, कि वह हमें अपना मार्ग सिखाए कि हम उसके पथों पर चलें। तो वास्तव में पुस्तक का अंतिम खंड उस मुद्दे से संबंधित है। मसीहा क्यों आया है? नहीं, वह हमें अपने विशेष लोगों को कठिनाई से बाहर निकालने और हमें अमीर बनाने के लिए आया है। नहीं, वह इसीलिए नहीं आया है। तो यह सिर्फ एक सिंहावलोकन है, क्योंकि हम इस अनुभाग को शुरू कर रहे हैं। कृपया काम करते समय इसे ध्यान में रखें। अब हम जो करने जा रहे हैं वह अगले सप्ताह है, स्मृति दिवस। क्षमा करें, हम अध्याय 58 और 59 करने जा रहे हैं। हम इस खंड को यहाँ पूरा करने जा रहे हैं। फिर अगले सप्ताह, जून के पहले सप्ताह में, हम अध्याय 63 से 66 तक पढ़ने जा रहे हैं, जो कई मायनों में इन विचारों को दोहराता है। हम वहाँ एक राउंड कवर करने जा रहे हैं। फिर हम वापस आने वाले हैं और हम 10 जून को 60 से 62 के साथ समाप्त करने जा रहे हैं। जो भी हो, जून में दूसरा सोमवार और हम अपना अध्ययन पूरा करेंगे। तो यही कारण है कि हम इस अजीब संरचना के कारण थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, प्रश्न टिप्पणियां, क्या यह पर्याप्त स्पष्ट है? ठीक है, पूछने में संकोच न करें। ठीक है, आज रात फिर 56 से 57। ऐसा माना जाता है कि अध्याय 56 से 66 की पृष्ठभूमि निर्वासन के बाद की अवधि में यहूदियों को संबोधित की गई थी। वे उन लोगों को संबोधित प्रतीत होते हैं जो मानते हैं कि ईश्वर उन्हें केवल उनके जन्मसिद्ध अधिकार के कारण स्वीकार करते हैं और धर्मी व्यवहार वास्तव में मायने नहीं रखता है। यह निष्कर्ष शायद उन्होंने बेबीलोन से मुक्ति के बाद निकाला होगा। परमेश्वर द्वारा उन्हें बचाने के लिए उन्हें धर्मी बनने की आवश्यकता नहीं थी, उसने अभी उन्हें वितरित किया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे रहते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे अन्य लोग भी थे जो वास्तव में इस बात से परेशान थे कि उनकी भूमि पर वापसी से उनके व्यवहार में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। यशाया विभिन्न बिंदुओं पर उनके लिए बोलता प्रतीत होता है। परमेश्वर इन लोगों को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह उनकी समस्याओं से निपटेगा और उनके माध्यम से राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनकर चमकेगा। तो एक बार फिर साइरस को छोड़कर 40 से 55 की तरह कोई ठोस ऐतिहासिक विवरण नहीं है। आपके पास निर्वासन से संबंधित कोई ठोस ऐतिहासिक विवरण नहीं है। क्यों? मुझे लगता है क्योंकि यशाया उन्हें नहीं जानता था। आत्मा की प्रेरणा से वह भविष्य में वहां की स्थिति के बारे में बात करने में सक्षम था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उनका जीवन कैसा होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ भी यही सच है। निर्वासन के बाद की अवधि का कोई विवरण नहीं है, लेकिन प्रेरणा से यह समझकर कि वहाँ स्थिति क्या होगी, धार्मिक और व्यवहारिक रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हाँ, क्या हम अभी समसामयिक समय में भी वह पैटर्न नहीं देख रहे हैं? इसराइल, वे भूमि पर वापस आ गए हैं, लेकिन वे इसे अपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में देख रहे हैं। यहीं से हमने शुरुआत की, लेकिन वे इसे अधिकांश धर्मनिरपेक्ष देशों के लिए भगवान के संदेश से नहीं जोड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, और वे इसके औचित्य के रूप में प्रलय का उपयोग करेंगे। क्या ईश्वर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहता है? वह ठीक है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन यह बहुत दिलचस्प है कि कम से कम उन लोगों के एक समूह के लिए जिन्होंने बेबीलोनियों के हाथों बड़े पैमाने पर भयानक चीजें नहीं, लेकिन निश्चित रूप से भयानक चीजें झेली, उन्होंने पलटकर कहा, नहीं, हम अलग होने जा रहे हैं। आधुनिक इसराइल के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, अध्याय 56 श्लोक 1 से 8 तक, इन श्लोकों में दो समूहों को संबोधित किया गया है। श्लोक 3, वह किससे बात कर रहा है? विदेशी। और पद तीन एक अन्य समूह भी, नपुंसक विदेशी और नपुंसक। अब व्यवस्था विवरण 23 श्लोक 7 और 8 में इन दोनों को भगवान की पूजा से कोई लेना देना करने से मना किया गया है, परंतु यहाँ जो परदेशी यहोवा से मिल गया है वह यह न कहे कि यहोवा मुझे निश्चय अपनी प्रजा से अलग कर देगा। नपुंसक यह न कहें, मैं सूखा वृक्ष हूं, क्योंकि प्रभु यों कहता है। अब वे कौन से व्यवहार हैं जो ये विदेशी और हिजड़े कर रहे हैं जिन्हें ईश्वर स्वीकार करता है? सप्त का दिन मनाओ, दूसरा जो सही है उसे चुने, न्याय बनाए रखें, वाचा रखो, दूसरे शब्दों में वस्तुनिष्ठ धर्मनिष्ठ आचरण। अब मैं अगले सप्ताह सब बात के बारे में और अधिक कहने जा रहा हूँ, इसलिए इस समय मैं उस पर निर्भर नहीं रहूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आपका व्यवहार मेरे जैसा हो। यदि आप हमारे निर्गमन अध्ययन के माध्यम से यहाँ थे तो मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि मैंने तर्क दिया था कि वाचा का उद्देश्य भगवान के चरित्र को करके सिखाना है। यदि आप वाचा का पालन करते हैं तो आप भगवान के व्यवहार की नकल कर रहे हैं, आप भगवान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आप उसके रास्ते पर चल रहे हैं, आप उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो ये लोग नपुंसक विदेशी जो वास्तव में मेरी वाचा का पालन करते हैं उनका स्वागत है, वे मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। खैर, यह हम पर कैसे लागू होता है? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है और इस अगले भाग में इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यह बिल्कुल सही है, मेरा मतलब है, अरे हम भगवान के लोग हैं। मैं वेदी पर गया हूँ, मैं चर्च में शामिल हो गया हूँ, मैं निर्वाचित सदस्य हूँ, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे रहता हूँ या नहीं। मेरी वाचा का पालन करो। आज आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर की वाचा को निभाने का क्या मतलब है? जाहिर है हम अपनी कनपटी के कोनों पर बाल काटते हैं, भरोसा करते हैं और आज्ञा मानते हैं। और क्या? आज अनुबंध के पालनकर्ता होने का क्या मतलब है? ठीक है, ईश्वर और एक दूसरे का सम्मान करना। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, प्राण, मन और शक्ति से, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पॉल ने यह कहा, पूरे कानून को एक शब्द में समेटा जा सकता है, प्रेम। अब इस बिंदु पर आप वह सब कुछ जानते हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है, तुमने कुछ सीखा है फ्रेड। प्रेम, स्नेह, भावना और भावना ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का एक ध्रुव है। दूसरा ध्रुव क्या है? आज्ञाकारिता। हाँ, हालांकि एक शब्द है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में एक वाक्यांश है जो यांत्रिक है। मैं वही करने जा रहा हूं जो ईश्वर चाहता है। मैं भगवान को नाराज नहीं करने जा रहा हूं, मैं उसकी अवज्ञा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन प्रभु के भय के बिना प्रेम बहुत आसानी से भावुकता तक पहुंच सकता है। ओह, मैं भगवान के बारे में बहुत गर्मजोशी और उलझन महसूस करता हूं, और मैं नरक की तरह रहता हूं क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं मैं माफ करता हूं। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। यह वह नहीं है जिसके बारे में जॉन बात कर रहा है जब वह कहता है कि पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। वह जिस बारे में बात कर रहे हैं वह निंदा का डर है। प्रभु का भय कहता है कि मैं प्रभु को अप्रसन्न नहीं करना चाहता। निंदा के डर से कहते हैं कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता। इसमें भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ता। आप बस सजा से बचने के लिए न्यूनतम प्रयास कर रहे हैं। प्रभु का भय मानते हुए आप उसे प्रसन्न करने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए वाचा में रहने का मतलब है, अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो मैं उसका नाम व्यर्थ नहीं लेता। यदि मैं प्रभु से फिर भी प्रेम करता हूं तो मैं अगली बार इसके बारे में और अधिक बात करने जा रहा हूं, मैं रविवार को काम नहीं करता। यदि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो मैं तुम्हारा सामान नहीं लेता। यदि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो मैं अपनी पत्नी पर विश्वास रखता हूं। यदि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो आप देखिए कि मैं कहां जा रहा हूं। तो प्रभु का भय सामग्री देता है, प्रभु का प्रेम प्रेरणा और आनंद देता है। तो हम वाचा में रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में रहते हैं और वही चुनते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प वाक्यांश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, मुझे वापस जाकर एक मिनट के बारे में बात करनी है। यदि वास्तव में परमेश्वर का इरादा अंतः विदेशियों और किन्नरों को अपनी पूजा में शामिल करने का था, तो उसने शुरुआत में उन्हें बाहर क्यों रखा? मेरा मतलब है, हैरी इमर्सन फॉस्डिक कह सकते हैं, ओह ठीक है, व्यवस्था विवरण गलत था और प्रगतिशील रहस्योद्घाटन के कारण यशायाह ने अब व्यवस्था विवरण को सही कर दिया है। खैर, मुझे एक मिनट के लिए भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। व्यवस्था विवरण सही है और यशायाह सही है, लेकिन वे असहमत क्यों थे? जय, मुझे लगता है कि यह इसका हिस्सा हो सकता है। हाँ, 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 बुतपरस्त पूजा। और कुछ? कोई अन्य विचार? वह अपने लोगों को अलग रखना चाहता था ताकि वे जान सकें कि वे ही वह वंश हैं जिनके माध्यम से मसीहा आएगा। हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि उन सभी में जो एकमात्र अन्य चीज मैं जोड़ना चाहूंगा वह यह है कि जब आप शिक्षा की बुनियादी बातों में होते हैं तो आप चीजों की बारीकियां नहीं करते हैं। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए आप उन्हें यथासंभव गहरे रंगों में रंगें। इसलिए हिजड़ो, मैंने आपके शरीर को ऐसा बनाया है कि आप अपने साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्षमा करें, चालाकी मत करो। आप किसी भी तरह से अपने आप को वंचित करने और अपने आप को मेरे लिए अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए अपने शरीर के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन व्यवस्था विवरण उत्कृष्टता की भी बात करता है। हाँ, लेकिन फिर से यह इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भगवान ने हमें संपूर्ण बनाया है और हम संपूर्ण लोगों के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो आप वह बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वह आध्यात्मिक पूर्णता के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह उस बात को स्पष्ट करने के लिए भौतिक बिंदु का उपयोग कर रहा है। आप इसे पुराने नियम में बार बार देखते हैं। पुराने नियम में आपको कैसे आशीर्वाद मिलता है? आप अमीर हो जाते हैं, आपके पास बहुत सारी जमीन होती है, आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं। वह आशीर्वाद है। दरअसल ऐसा नहीं है। आशीर्वाद दिल का मामला है, और जब तक ईश्वर आपको भीतर से आशीर्वाद न दे, पूरी दुनिया में आपको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। लेकिन वह इन शिशुओं के साथ आध्यात्मिक आशीर्वाद के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। वह अपनी बात कहने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि यहां भी यही हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पद 7 और 8 हमें यहूदियों और उनके मंदिर के अंतिम उद्देश्य के बारे में क्या बताते हैं? सभी राष्ट्रों के लिए एक मंदिर। घर को क्या कहा जाए? प्रार्थना का घर। मुझे लगता है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। यह बात मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती रही है कि सुलेमान द्वारा मंदिर के समर्पण में वह कहता है, अब उसने 100,000 बैल या उस जैसी कोई चीज कुछ अविश्वसनीय संख्या में बलि चढ़ा दी है, लेकिन उसकी प्रार्थना एक स्थान के रूप में मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहती है। बलिदान का यह पूरी तरह से प्रार्थना स्थल के रूप में है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। अरे हाँ, मैं इस मंदिर में जाऊंगा और मैं ये अनुष्ठान करूंगा और मैं भगवान से छेड़छाड़ करूंगा और मैं अपना दिल अपने पास रखूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। यह रिश्ते की जगह है और रिश्ते को संचार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह एक घर है। हाँ, कभी नहीं। नहीं, ठीक है, इस सप्ताह ही ऐसा हुआ कि वेलिंग वॉल पर अंततः उन्होंने महिलाओं को वेलिंग वॉल के एक विशेष खंड में जाने की इजाजत दे दी, जो एक अद्भुत विकास है जिसके लिए रूढ़िवादी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और बाकी सब चीजों से। वह नई कविता है। हाँ, हेरोदेस का मंदिर। यह मंदिर की इमारत है। यह पुजारियों का दरबार है। यहीं पर वेदी थी और यहीं पर लोगों का दरबार था। यह स्त्रियों की अदालत है और यह गैर यहूदियों की अदालत है। और हमारे पास यहां से एक चेतावनी पत्थर है जो कहता है कि कोई भी गैर यहूदी जो इस रेखा को पार करता है वह अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। तो आप वहां मत जाइए। तो ये थी स्थिति। भेद के स्तर। ठीक है। हाँ हाँ, पुरुष और महिलाएं अन्य जातियों के रूप में यहां एक साथ हो सकते थे। वे सभी अशुद्ध हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इब्रानी स्त्रियां अन्य जाति पुरुषों आदि की तुलना में कम अशुद्ध होती हैं। लेकिन अब आइए अध्याय 66 निष्कर्ष, एप्राइम खंड, छंद 18 और निम्नलिखित पर नजर डालें। मैं उनके कार्यों और उनके विचारों को जानता हूँ। सभी राष्ट्रों और भाषाओं को इकट्ठा करने का उनका समय आ रहा है और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। यशाया 6 याद है? सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। वह दिन आने वाला है जब अन्य जाति आकर इसे देखेंगे। मैं उनके बीच एक चिन्ह स्थापित करूंगा। उनमें से मैं बचे हुओं को उन जातियों में भेजूंगा, अर्थात तर्शीश, पोल, लूद, जो धनुष खींचते हैं, तूबल और जावान, और दूर के समुद्र तटों में, जिन्होंने न तो मेरी कीर्ति सुनी है और न मेरी महिमा देखी है। और वे राष्ट्रों के बीच मेरी महिमा का प्रचार करेंगे। और वे अन्य जातियां तुम्हारे सब भाइयों को सब जातियों में से यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे इत्यादि। और उनमें से कुछ संदर्भ में राष्ट्र अन्य जाति हैं। मैं 4 याजकों और 4 लेवियों को भी ये लूंगा। बहुत खूब। यहोवा की यह वाणी है, जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाऊंगा वह मेरे सामने बनी रहेगी, उसी प्रकार तेरा वंश और तेरा नाम नए चांद से नए चांद तक और विश्राम दिन तक सदा बना रहेगा। सभी प्राणी मेरे सामने दंडवत करने के लिए आएंगे, प्रभु की यही वाणी है। प्रारंभ 56:1-8, अंत 66:18-23। इस पूरी चीज का लक्ष्य क्या है? ताकि सभी राष्ट्र आएं और प्रभु की महिमा देखें। ठीक है। अब यह सब कहने के बाद मैं 56:1 पर वापस जाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस श्लोक में तर्क को देखें। याद रखें कि संकेतों का एक कारण होता है। न्याय रखो और धर्म का काम करो, क्योंकि मेरा उद्धार शीघ्र होगा और मेरा उद्धार प्रकट होगा। अब उस वाक्य में तार्किक संबंध क्या है? मुक्ति आ रही है और उस मुक्त मुक्ति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? न्याय और धार्मिकता। हाँ हाँ, तर्क वितर्क के बजाय, चूंकि मैं अनुग्रह से बच गया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे रहता हूं। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। चूंकि मैं अनुग्रह से बच गया हूं, इसलिए मैं उसका जीवन न्याय और धार्मिकता से जीऊंगा। और फिर याद रखें कि मैंने कई बार क्या कहा है। न्याय शब्द के साथ समस्या यह है कि यह हिब्रू विचार के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं है। हिब्रू विचार में कानूनी न्याय और समानता शामिल है। इसमें वह भी शामिल है, लेकिन यह उससे भी बड़ा है। यह जीवन के लिए ईश्वर का दिव्य आदेश है। जीवन के लिए भगवान की दिव्य व्यवस्था में आप गरीबों पर अत्याचार नहीं कर सकते। जीवन के लिए ईश्वर की दिव्य व्यवस्था में आप किसी निर्दोष को न्याय के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन यह महज कानूनी न्याय से भी बड़ा है, क्योंकि हम अंग्रेजी में इस शब्द के बारे में सोचते हैं। इसलिए भगवान का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं। पॉल अपने सभी पत्रों में इसी बिंदु पर जोर दे रहा है। भगवान का शुक्र है कि आपको कानून का पालन करते हुए भगवान के लिए काफी अच्छा बनकर खुद को सही ठहराने की उस पुरानी कोशिश से मुक्ति मिल गई है। भगवान का शुक्र है कि आपको उससे छुटकारा मिल गया है। आप अनुग्रह से बच गए हैं। तो फिर निःसंदेह आप अपना पुराना पापपूर्ण जीवन छोड़ने जा रहे हैं, है ना? यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि कितने लोग मुक्ति के जटिल धर्मशास्त्र में फंस जाएंगे और पॉल द्वारा अपने प्रत्येक पत्र में कही गई पूरी बात को भूल जाएंगे। आप अनुग्रह से बच गए हैं। अब उस तरह जीना बंद करो। तुम उस तरह से मर चुके हो। अब इसके लिए मर जाओ। तुम उन पुराने कपड़ों को उतार दो। अब इन्हें उतारो। तुम ये नए कपड़े पहनो। अब इन्हें पहन लें। निष्पक्ष न्याय और धार्मिकता का जीवन अनुग्रह द्वारा मुक्ति का तार्किक निष्कर्ष है। ठीक है, चलो जल्दी करें। अध्याय 56 श्लोक 9 से 12। वह यहाँ किससे बात कर रहा है? ये अंधे पहरेदार, ये मूक कुत्ते, बड़े भूख वाले कुत्ते, मूर्ख चरवाहे। वह किसके बारे में बात कर रहा है? जनता के नेता, है ना? धार्मिक नेता, पैगंबर, पुजारी। इस समय आपके पास कोई राजा नहीं है, लेकिन आपके पास एक राज्यपाल है। हाँ, ये सही अर्थों में वह कह रहा है कि बहुत कुछ नहीं बदला है। अतीत में उनके पास इन पैगंबरों और पुजारियों और नागरिक शासकों के लिए कठोर शब्द थे, और अब उनके पास उनके लिए कठोर शब्द हैं। वे अपने लिए जी रहे हैं, और मैं आगे किसी भी राजनीतिक टिप्पणी से बचूंगा। अब 57:1-2 को देखें। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने वह नहीं सुना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, नहीं नहीं, चलो बस, क्या हो रहा है? धर्मात्मा लोग नष्ट हो रहे हैं। अच्छे लोग मर रहे हैं, आंशिक रूप से उन झूठे नेताओं के कारण। हाँ, अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकालें? धर्मात्मा व्यक्ति क्यों मर रहा है? बुराई से बचने के लिए, विपत्ति से दूर ले जाने के लिए। अब हम और आप कितनी बार सोचते हैं कि नेक लोग कब मरते हैं? अधिकांश समय हम ईश्वर पर अनुचित होने का आरोप लगाते हैं। यहाँ यह अच्छा व्यक्ति है। मुझे याद है जब मेरे अच्छे दोस्त एवरेट हंट की मृत्यु हो गई थी, 63 वर्ष की उम्र में, जैसा कि मुझे याद है, एक युवा मात्र बच्चा, और मैंने उस समय सोचा, भगवान, अगर आपको किसी को लेने की जरूरत है तो मुझे एक शॉर्टलिस्ट मिल गई है। लेकिन फिर मुझे ये याद आया, ओह, निश्चित रूप से यह है, निश्चित रूप से यह है, लेकिन फिर से, और मैं इस पर बहुत दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक प्यारा ईसाई बच्चा 16 साल की उम्र में मर जाता है, और हम कहते हैं, अरे नहीं, शायद यह सबसे अच्छी बात थी दुनिया। उस लड़के के साथ ऐसा हो सकता था। कौन जानता है कि भविष्य में उसके लिए क्या होगा? हम भविष्य नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। तो फिर वह कह रहा है, आपको लगता है कि भगवान अन्यायी है क्योंकि ये अच्छे लोग मर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ बता दूं। आप लोगों के सामने जो कुछ आने वाला है उसके कारण भगवान उन पर दयालु हो रहे हैं। वाह वाह, ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं। अब ये लोग, ये लौटे हुए यहूदी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम इब्राहिम की संतान हैं। तो भगवान ने हमें बचाया इसलिए नहीं कि हम धर्मी थे, इसलिए नहीं कि हमने कुछ विशेष किया, बल्कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम सही समूह में थे। पद 3 के अनुसार परमेश्वर उनकी विरासत के बारे में क्या कहते हैं? तुम व्यभिचारिणी के पुत्र हो। मुझे लगता है सेयोन के बारे में बात हो रही है। होशे याद है? होशे ने वेश्या से विवाह किया और उनके बच्चे हुए, लेकिन वे होशे के बच्चे नहीं हैं। सियोन की यह तस्वीर उस महिला के रूप में है जिसने सूर्य के नीचे हर दूसरे प्रेमी के साथ खुद को वेश्यावृत्ति की है, और भगवान कहते हैं कि तुम इसी से उत्पन्न हुए हो। आपको अपने जन्मसिद्ध अधिकार पर बहुत गर्व है, लेकिन वास्तव में आपके जन्मसिद्ध अधिकार से बदबू आती है। तो फिर अगले छंदों में वह श्लोक 3 से 13 तक का वर्णन करता है। वह उनकी धार्मिक प्रथाओं को मूल रूप से मूर्ति पूजा के रूप में वर्णित करता है। फिर यह भाषा पुस्तक के पहले भागों से इजेकील से भी काफी परिचित है। अब पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक, और मैं इसे पृष्ठभूमि में उठाता हूँ, अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि निर्वासन में यहूदी अपनी मूर्ति पूजा से ठीक हो गए थे और जब वे वापस आए तो वे अधिक इच्छुक थे मूर्ति पूजा का विरोध करना। तो सवाल यह है कि यशायाह इसे यहाँ क्यों ला रहा है? ठीक है, वे अभी भी इसे अपने दिलों में कर रहे हैं। अब हमने पहले भी विभिन्न तरीकों से बुत परस्ती के बारे में बात की है, और फिर मैं आपसे बहुत सारे पॉप क्विज प्रश्न पूछने में अनिच्छुक हूँ क्योंकि इससे एक शिक्षक के रूप में मेरी छवि खराब होगी, लेकिन भगवान के प्रति बुतपरस्त विचार क्या है? बुतपरस्ती, बुतपरस्त पूजा, भगवान के बारे में कैसे सोचते हैं? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। शायद मैं शिक्षण पेशे में ही रहूंगा। मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए धार्मिक चीजें करता हूँ। यह बुत परस्ती है और इसीलिए मैं यहाँ पूछता हूँ। मान लीजिए यशायाह कह रहा है कि उनकी रूढ़िवादी धार्मिक प्रथाएं वास्तव में प्रकृति में बुत परस्त हैं, जैसे कि वे वास्तव में ये चीजें कर रहे थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इंजील उत्तरी अमेरिकी प्रोटेस्टेंटवाद में बुत परस्ती कैसी दिखती है? अपना दशमांश दो ताकि भगवान तुम्हें और अधिक आशीषें लौटाएं। यही है, भगवान हर प्रार्थना का जवाब देंगे क्योंकि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। नहीं, वह बाइबल आधारित है। उपवास कैसा रहेगा? यदि मैं पर्याप्त रूप से चर्च जाता हूं, हर पापी की निंदा करता हूं। हाँ। इन सभी तरीकों से मुझे नौकरी पाने की जरूरत है, इसलिए भगवान मैं अगले महीने तक हर दिन भक्ति करूंगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके पास उत्पादन के लिए एक महीना है। हाँ, बुत परस्ती, हाँ, यह सही है, यह सही है। हाँ, यह यांत्रिक है। इसे सही से करें और यह हर बार काम करेगा। यदि यह काम नहीं करता है तो आपने इसे ठीक से नहीं किया है। ट्रेडमिल चलाना, कुछ भी उत्पादन नहीं करना। हाँ। तो ईश्वर के प्रति गैर बुत परस्त रवैया क्या है? वह हमारी प्रार्थनाओं के योग्य हैं, भरोसा करो, भरोसा करो। आज्ञाकारिता, मुझे दशमांश क्यों देना चाहिए? क्योंकि यह ऐसा कहता है। हाँ, यह बहुत अच्छा है। प्यार के बारे में क्या ख्याल है? मैं कहने जा रहा था, मुझे लगता है कि यदि आपके पास भगवान का प्यार है तो आप उस प्यार से काम करते हैं। हाँ, जो बच्चा उस लड़की से प्यार करता है वह यह नहीं कहता, हम्मा मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है कि क्या शायद हम मैकडॉनल्ड्स के साथ काम कर सकते हैं। नहीं, आप फिजूल खर्ची करने जा रहे हैं, चेकर्स जैसी किसी उच्च श्रेणी की जगह पर जा रहे हैं या, लेकिन नहीं, यह फिर से है, अगर आप प्यार करते हैं तो आप नहीं पूछते हैं मैं कितना कम देकर गुजारा कर सकता हूँ। आप पूछते हैं ओह मैं कितना दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। दुनिया के सारे फर्क, एक ही काम करने वाले दो लोग जरूरी नहीं कि एक ही काम कर रहे हों। यह प्रार्थना कर रहा है, वह प्रार्थना कर रहा है, वह प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहा है, वह पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, वे वही काम नहीं कर रहे हैं। यह वह जगह है जहां आपका दिल है। हाँ बिल्कुल, यह वह जगह है जहां आपका दिल है। जॉन, मैं प्रार्थना के बीच में था जब फ्रेड दक्षिण पूर्व एशिया में था, और इसके बीच में भगवान ने कहा अपनी प्रार्थना बदलो, तुम यीशु के लिए प्रार्थना करने की भीख मांग रहे हो। हाँ 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 हाँ, यीशु ने कहा जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपने पिता का महिमामंडन करना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, अध्याय 57 श्लोक 14 से 21 तक। यह कहा जाएगा, निर्माण करो, निर्माण करो, रास्ता तैयार करो, मेरे लोगों के रास्ते से हर बाधा को हटा दो। अब यह कुछ हद तक अध्याय 40 जैसा लगता है, लेकिन अध्याय 40 में कौन आ रहा है? यह भगवान है। एक सुपर हाईवे तैयार करें ताकि प्रभु हमारे पास आ सकें। हाँ हाँ, हमारे पास उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी पाप पूर्णता में किसी भी तरह से उसकी कृपा पाने के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वह कर सकें। हम नहीं कर सकते, उसे हमारे पास आना होगा, लेकिन फिर हमें उसके पास जाना होगा। तो भगवान क्या कहते हैं? श्लोक 15। हम ईश्वर तक कैसे पहुंचें? दुखी हृदय और विनम्रता। हाँ हाँ हाँ, किताब की सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक। जो ऊंचा और ऊंचे स्थान पर है, जो अनंत काल तक वास करता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यही कहता है। अरे बाप रे, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूँ और उसके साथ भी रहता हूँ जो दुखी और दीन आत्मा का है, ताकि दीनों के मन को फिर से जीवित कर सकूं। क्या वह सुंदर नहीं है? अरे बाप रे, वह अकल्पनीय प्रकाश में रहता है। वह किसी भी चीज से परे है जिसकी हमारी कल्पना कल्पना कर सकती है, और सबसे निचले दिल में भी। हाँ, इसलिए अगर मुझे अपनी धार्मिकता पर गर्व है तो भगवान यहां नहीं रहेंगे। ओह ठीक है, निःसंदेह इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा अपवित्र हूँ। हम एक दूसरे से अपवित्र होने पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, वह बात नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारे भीतर कोई अच्छी चीज वास नहीं करती, परंतु यदि पवित्र आत्मा हम में हमारे पश्चाताप में वास करता है तो वह अद्भुत फल उत्पन्न कर सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसका उस विषय से क्या संबंध है जिसे हमने पूरी किताब में देखा है? जब हम स्वयं को ऊंचा उठाते हैं तो क्या होता है? हम गिरते हैं। और जब हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने आप में असहाय हैं और पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हैं, तो क्या होता है? वह हमें ऊपर उठाता है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, अपमानित हो। अपने आप को अपमानित न करें, बल्कि अपने बारे में एक सही धारणा बनाएं और उसे अपने बगल के सिंहासन पर बैठने के लिए आपको उठाने की अनुमति दें। मैं हमेशा संघर्ष नहीं करूंगा, मैं हमेशा क्रोधित नहीं रहूंगा, मेरे भीतर आत्मा धुंधली हो जाएगी, जीवन की सांस जो मैंने बनाई। फिर भगवान की करुणा, हमारे साथ भगवान की भागीदारी। उनका, जैसा कि मैंने वर्षों पहले याद किया था, वह कहते हैं, उन्हें अपने बच्चों पर दया आती है। उन्हें अपने बच्चों पर दया आती है। वह जानता है कि हमारा ढांचा कमजोर है। वह जानता है कि हम धूल हैं। वह सब जानता है। ठीक है। तो वे श्लोक 16, 17, 18 हमारे लिए भगवान के अंतिम उद्देश्य के बारे में क्या कहते हैं? उससे रिश्ता बनाना है। यदि वह क्रोधित होता है, तो यह केवल एक क्षण के लिए होता है, उसका अंतिम उद्देश्य होता है। और इसलिए मैं आपसे अपनी पंक्ति पूछता हूँ, भगवान का इच्छित अंतिम शब्द कभी विनाश नहीं है। मुझे आशा है कि आपको यह याद होगा। परमेश्वर का इच्छित अंतिम शब्द कभी विनाश नहीं है। यह उनका आखिरी शब्द हो सकता है, लेकिन यह हम पर निर्भर है। उनका इच्छित अंतिम शब्द उपचार और पुनर्स्थापन है। और यदि वह मुझे विनाश की बात कहता है, तो इसलिए नहीं कि वह मुझे नष्ट करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहता है कि मैं होश में आ जाऊं और ठीक हो जाऊं। अगर मैं अपने होश में नहीं आऊंगा, तो मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसका उद्देश्य तो, वह पद 18 में कहता है, मैंने उसकी चाल देखी है, परंतु मैं उसे चंगा करूंगा। मैं उसका नेतृत्व करूंगा और होठों का फल पैदा करके उसे और उसके शोक मनाने वालों को आराम पहुंचाऊंगा। क्या यह दिलचस्प नहीं है? इसका क्या मतलब है? मैं उसका नेतृत्व करूंगा और होठों का फल पैदा करके उसे और उसके शोक मनाने वालों को आराम पहुंचाऊंगा। वह क्या है? स्तुति करो, स्तुति करो। हाँ, हाँ। और यही वह चीज है जो हमने पूरी किताब में देखी है। हे भगवान, मैं उसके हाथ के पीछे का पात्र हूँ। और उसने मुझे अपने हाथ का अगला भाग दे दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे फिर से राजा जेम्स की भाषा के रूप में कीचड़ भरी मिट्टी से बाहर निकाला, होठों का फल तैयार किया। बहुत ही रोचक। आपको प्रशंसा सिर्फ महसूस नहीं होती, आपको उसे बोलना भी पड़ता है। इसीलिए गवाही बैठ के अच्छे समय हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। और जब तक हम अपने अभिमान में रहेंगे, हमें किसी उद्धारक की आवश्यकता नहीं है। मैं उन सबसे अच्छे लोगों में से एक हूं जिन्हें मैं जानता हूं। ईश्वर हम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब हम अपने गौरव और अपनी आत्मनिर्भरता की बाधाओं को दूर करते हैं और अपनी जरूरतों को स्वीकार करते हैं, तभी हम उसके पास आ सकते हैं। उसे हमारे पास आना ही होगा, लेकिन एक रोक बिंदु है। और उस बिंदु पर हमें कहना होगा, हाँ, हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता। मैं आप पर निर्भर हूं। और उस क्षण में उच्च और पवित्र व्यक्ति इस नीच घर में अपना निवास स्थान बना लेता है। ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां भगवान सबसे पहले हमारे पास आते हैं। हाँ, और फिर हमें आना ही होगा, लेकिन यह दूसरे धर्म होंगे जो कहते हैं कि तुम उनके भगवान के पास जाओ। यह सही है। यह बिल्कुल सही है। यदि ईसाई धर्म में कोई विशिष्ट धर्मशास्त्र है, तो वह अनुग्रह है। मॉर्मन इतना सच्चा जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि मॉर्मनवाद में कोई अनुग्रह नहीं है। सबसे अच्छे मुसलमान इतना सच्चा जीवन क्यों जीते हैं? और वे करते हैं। फिर क्योंकि कोई अनुग्रह नहीं है। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको यह करना होगा। और यही ईसाई धर्म के लिए उसके पूरे इतिहास में अभिशाप रहा है। ओह, चूंकि मैं अनुग्रह से बच गया हूँ, मैं नरक की तरह जी सकता हूँ। और दुनिया हमें देखती है और कहती है, हाँ, अगर यही धर्म है तो मुझे नहीं लगता कि आज मेरे पास उसमें से कुछ भी होगा। और इसलिए हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। ठीक है, अब वह कहते हैं, श्लोक 19, 20 और 21 एक सिद्धांत है जिसे सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है, जो कहता है कि अंततः सभी लोगों को बचाया जाएगा। ये आयतें उसके बारे में क्या कहती हैं? हाँ, यदि तू दुष्टता में बना रहेगा तो तू उद्धार न पाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। यह अक्सर कहा जाता है, ठीक है, मेरा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा होता है और स्वर्ग और नरक के विकल्प देखता है, अगर वे अंततः देखते हैं कि भगवान वास्तविक है, तो निश्चित रूप से वे मसीह को स्वीकार करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या आपकी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बहस हुई है जो अपनी बात से पूरी तरह आश्वस्त हो। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कितने जबरदस्त तर्क पेश करते हैं। यह काफी अच्छा नहीं होगा क्योंकि अंततः यह बहस के बारे में नहीं है, यह सत्य के बारे में नहीं है, यह मेरे तरीके के बारे में है। और इसलिए मैंने यह बात आपसे पहले भी कई बार कही है, लेकिन मृत्युशया पर रूपांतरण के आंकड़े बिल्कुल निराशाजनक हैं। यह 1% जैसा कुछ है। यदि आप अपना पूरा जीवन अपने लिए जीते हैं और अब बचाए जाने के लिए खुद को त्यागने के लिए आमंत्रित हैं, तो यह कीमत बहुत अधिक है, बहुत बहुत ऊंचा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यह नहीं कहती है कि पृथ्वी के राजा पश्चाताप करेंगे और क्षमा के लिए चिल्लाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि पृथ्वी के राजा चट्टानों को अपने ऊपर गिराने के लिए चिल्लाएंगे और उन्हें जीवित परमेश्वर की आंखों से छिपा देंगे। तो ये 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनंत काल अधर में लटका हुआ है। प्रभु कहता है, दूर और निकट तक शांति, 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 और मैं उसे चंगा करूंगा। हाँ, यह शांति नहीं है, शांति उन लोगों के लिए है जो स्वयं को ठीक करने जा रहे हैं। शांति शांति उन लोगों के लिए जिन्हें उपचार की आवश्यकता नहीं है। शांति उन लोगों को शांति जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, और इसे जानें और इसे प्राप्त करें और मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। परंतु दुष्ट उछलते हुए समुद्र के समान है, यह शांत नहीं हो सकता। उसका जल कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरे भगवान का कहना है कि दुष्टों के लिए कोई शालोम नहीं है। एक आखिरी शब्द, दुष्ट। उस शब्द का मूलतः अर्थ ईश्वर विहीन है। ऐसे जीना जैसे कोई ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, हाँ, यदि आप इसी तरह रहते हैं तो भगवान आपको अपना शालोम नहीं दे सकते। क्या वह दे सकते हैं? आपको यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर है और मैं वह नहीं हूं। और जब तक आप उस बिंदु पर नहीं आते, तब तक ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो हमने अब तक ए पर ध्यान दिया है। भगवान का इरादा है कि सभी लोग उसके प्रार्थना घर में आएंगे। हमने भाग बी, भगवान के लोगों की धर्मी होने में असमर्थता को देखना शुरू कर दिया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं इन धर्मी नपुंसकों और विदेशियों को महत्व देता हूँ, परंतु मेरे लोग धर्मी जीवन नहीं जी रहे हैं। हम इसे अगले सप्ताह बहुतायत में देखने जा रहे हैं। अध्याय 58 और 59 में यह वास्तव में बहुत तीव्र हो जाता है, लेकिन 59 के अंत में हम दिव्य योद्धा का रहस्योद्घाटन देखते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, धन्यवाद, धन्यवाद कि आप आए, और तुम्हारा धन्यवाद कि आकर अब तुम अपने कीलों से छेदे हुए हाथ हमारी ओर बढ़ाकर कहते हो, हे बालकों, अब मेरे पास आओ। तुम सब जो भारी बोझ के नीचे परिश्रम करते हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शालोम, हमारी मदद करो प्रभु, मेरी सहायता करो। आपको एक मूर्ति में बदलना बहुत आसान है। आपका बच्चा बनने के बजाय हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में आपका उपयोग करना इतना आसान है, ताकि आप हमारे माध्यम से अपने अच्छे उद्देश्यों को पूरा कर सकें। हमारी मदद करो प्रभु, हमारी मदद करें। धन्यवाद कि आपको हमारे दिलों में रहने के लिए ऊंचे और पवित्र स्थान से आने का रास्ता मिल गया है। आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। तथास्तु, यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 27, यशायाह अध्याय 56 और 57 है।